हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका पेश हैं समाचार। आज दिन गुरुवार तारीख 22 मई 2025। बुधवार की सुबह भूस्खलन में मॉन्ट्रियल के उत्तर पूर्व में एक घर और सड़क का एक हिस्सा बह गया है, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आंध्र लेमेर ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे जमीन खुल गई, जिससे जमीन और उनके पड़ोसी का घर इसके अंदर चला गया। क्वेबेक के सेंट मोनिक में नदी के किनारे खेत में रहने वाले लेमेर ने बताया कि उन्हें ऐसा पता चला कि ऐसा होगा। लेमेर ने कहा कि सुबह सुबह उन्हें उनके साथी ने सचेत किया और वे बाहर आए, जहां उन्हें बहुत शोर सुनाई दे रहा था, जहां उन्होंने ये देखा कि उनके पड़ोसी का घर लैंडस्लाइड की वजह से नष्ट हो गया। हालांकि वे इससे पहले घर से भागने में सफल रहे थे। क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा निदेशक ने बताया कि भूस्खलन के समय घर खाली था और इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। गड्ढे के तल पर दबे हुए घर की छत दिखाई दे रही थी, जिसका अनुमान अंदाजन 760 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा लगाया गया। उन्होंने बताया कि संवाददाताओं को कि इस समय भूस्खलन बढ़ रहा है। लेमेर के घर सहित आसपास के कई घरों को सावधानी के तौर पर पहले ही खारी कला दिया गया था। ये बताया जा रहा है कि इलाका भूस्खलन के लिए जाना जाता है और हाल ही के दिनों में यहाँ भारी बारिश होने के बावजूद ये ऐसा करना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा मेयर ने बताया कि निकोलेट नदी के दोनों किनारों पर लगभग 500 लोगों के समुदाय को भूस्खलन के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। प्रांत ने हाई रिस्क वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए मैप्स बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये घर इससे पहले बनाए गए थे। इस बीच कुछ अन्य समाचारों में, रेम लाइट रेल लाइन अपने पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार कर रही है, ताकि सवार अपने साथ उनके कुत्तों और बाइक को ट्रेनों में जाने की अनुमति दी जा सके। 4 जुलाई तक कुत्तों को पट्टे के साथ रेम में जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि पिछले साल भीड़भाड़ वाले घंटों के दौरान उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। 4 जुलाई के बाद रेम 17 अगस्त तक बंद रहेगा और सवारियों को शटल बसों का उपयोग करना होगा। शटल बसों में केवल सेवा कुत्तों की यानी कि सर्विस डॉग्स की अनुमति दी जा सकती है और साइकिल चालक अपनी बाइक को बसों में नहीं ला सकते हैं। 18 अगस्त से कुत्तों और बाइक को फिर से बिजी आवर्स वाले घंटों को छोड़कर ट्रेन में जाने की अनुमति दी जाएगी। कुत्तों के लिए ये जरूरी है कि उनके पास एक मफल यानी थूथन हो और बाइक सवारों की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें अन्य यात्रियों को पहले बाहर निकलने और प्रवेश करने की अनुमति दी जानी जरूरी है। एक शेयरधारक वकालत समूह का कहना है कि क्यूबेक के सैगनिक क्षेत्र में एक फ्यूल प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना को रिवाइव करना महंगा और संभवतः लाभहीन होगा। पेरिस अनुपालन के निवेशकों का कहना है कि 2022 और 2024 के बीच यूरोप में एलएनजी की मांग में 18% की गिरावट आई है और कनेडियन मार्केट्स को एशियन बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल होगी। आज सुबह प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर में प्रोजेक्ट्स द्वारा संचालित 2024 से 2028 तक गैस उत्पादन में 40% की वृद्धि होने की उम्मीद है। पश्चिमी कनाडा से क्यूबेक में एक निर्यात टर्मिनल तक प्राकृतिक गैस के परिवहन की एक परियोजना को इस समय एनवायरमेंटल जोखिम और सार्वजनिक विरोध के कारण 2021 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन हाल ही के दिनों में क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसवा लेगो ने प्रांत में पाइपलाइन विकास के लिए दरवाजा खोल दिया है। हालांकि एडवोकेसी समूह का कहना है कि इन्फ्लेशन के कारण परियोजना की कीमत $33 बिलियन से अधिक हो सकती है और इसके लिए सार्वजनिक धन की आवश्यकता होगी। अन्य समाचारों में, क्वेबेक सिटी पुलिस ने हाल ही के दिनों में युवा लड़कों को निशाना बनाकर सेक्सटॉर्शन की कई मामलों की सूचना मिलने के बाद सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित मुख्य रूप से 12 से 17 वर्ष के बीच के किशोर हैं, हालांकि लड़कियों को भी निशाना बनाया गया है। एसपीवीक्यू ने माता पिता से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे सेक्सटिंग से जुड़े जोखिमों से अवगत हैं। क्वेबेक सिटी पुलिस का कहना है कि उन्हें कई मामलों के बारे में पता चला है जहां अपराधी सोशल मीडिया पर एक युवा लड़की होने का दावा करते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ तस्वीरें देकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों की भी जानकारी है जहां अपराधियों ने पीड़ित की प्रोफाइल से ली गई तस्वीरों के साथ अंतरंग छवियों को जोड़कर वीडियो एडिट किए हैं। एसपीवीक्यू ने कहा कि ऑनलाइन कोई भी कंटेंट साझा करने से पहले आप उन लोगों के साथ इसे ना शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि इसे कॉपी, रिकॉर्ड या पायरेट किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह सैन डिएगो के एक इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक निजी विमान में सवार कई लोग मारे गए हैं। एक समाचार सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि विमान बिजली की लाइन से टकराया या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन पर कोई भी घायल नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह कोहरे के मौसम में एक छोटा विमान सैन डिएगो के एक इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें करीब 15 घरों और वाहनों में आग लग गई और कई ब्लॉकों के घरों को खाली कराना पड़ा। इन्हीं पता चल पाया है कि इसमें कोई मौत हुई है या कोई घायल हुआ है। हालांकि सड़क पर छत एकदम काली पड़ चुकी है और कुछ सफेद धातु के टुकड़े सड़क पर नजर आ रहे हैं। वहां पर आधा दर्जन पूरी तरह से जली हुई कारें और साथ ही सड़क और पेड़ों की टहनियां भी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार को अपने नए मंत्रियों के लिए सामूहिक प्राथमिकताओं की एक सूची रखी, जिसमें उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार जीवन की लागत को कम करने और कनाडा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए काम करेगी। कार्नी ने व्यक्तिगत असाइनमेंट की पारंपरिक श्रृंखला के बजाय अपने पूरे मंत्रिमंडल के लिए सार्वजनिक रूप से केवल एक ही जनादेश पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि उनके मंत्रिमंडल का हर सदस्य एक यूनिफाइड मिशन शेयर करता है। उन्होंने कहा कि ये पत्र कनाडा की नई सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं को अंडरलाइन करती है, जो कैनेडियंस द्वारा हमें दिए गए जनादेश को दर्शाती है। सरकार पर G7 में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का दायित्व तो है, ताकि कनेडियन परिवारों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम किया जा सके। कार्नी ने टिप्पणी क्यूबेक के गेटिन्यू में अपने नए मंत्रिमंडल के साथ 2 दिवसीय गुप्त रिट्रीट आयोजित करने के बाद पार्लियामेंट हिल पर पत्रकारों से बात करते हुए की। पुलिस का कहना है कि ह्यूमन स्मगलिंग की जांच के बाद एक व्यक्ति को 8 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है और 2 अन्य को परिवीक्षा अवधि की सजा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 84 विदेशी नागरिकों के खराब परिस्थितियों में रहने और ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज द्वारा उनके शोषण किए जाने के बारे में पता चला है। RCMP और कनाडा सीमा सेवा एजेंसी का कहना है कि 2018 में उन्होंने एक संयुक्त जांच शुरू की थी, जब उन्हें पता चला कि विदेशी नागरिक प्रमुख हवाई अड्डों के माध्यम से विजिटर के रूप में देश में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए स्मगल किया जा रहा था, जो हैमिल्टन और नियाग्रा क्षेत्र में था। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हमसफर से।